17 सितंबर दिन शनिवार, नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। गुजरात में पिछले दिनों दलित आंदोलन चला रहे नेता जिग्नेश मेवानी को हिरासत में लिया गया, वो भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले। चलेंगे अहमदाबाद, जानेंगे पूरा घटनाक्रम। गिरफ्तारी से कुछ घंटों पहले ही जिग्नेश मेवानी ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा था,
बिल्कुल तो गिफ्ट तो उनको मिलेगा, मुझे तो ये भी सपना है कि कल उनका जो कार्यक्रम है दाहोद में, वहाँ पे नाराज जो लोग हैं गुजरात की नाराज जनता, वो कुर्सियां भी उछालेगी, ऐसा मुझे सपना भी आया।
बिहार में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत पर विवाद जारी, लेकिन वो क्या कहते हैं?
डॉन की तो यही स्थिति है कि मैं भाग रहा हूँ लोगों से और लोग बेडरूम तक दौड़ा रहे हैं, ऐसा डॉन तो शायद आप भी देखा होगा।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। अहमदाबाद पुलिस ने गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर कल रात हिरासत में ले लिया। वो दिल्ली से अहमदाबाद वापस लौट रहे थे। जिग्नेश के भाई विरल मेवाणी ने कहा कि करीब 25 से 30 पुलिसकर्मी सादे लिबास में हवाई अड्डे पर मौजूद थे और जिग्नेश जैसे ही हवाई अड्डे से बाहर आए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद पहुंचे हैं और आज वहां उनके जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पुलिस शायद उस स्थिति से बचना चाह रही थी जो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सूरत कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुई थी। सूरत में कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया था। स्लोवाकिया में यूरोपीय संघ की बैठक इस वादे के साथ खत्म हुई है कि यूरोपीय संघ को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। ईयू के 27 सदस्यीय देशों के नेता इसके लिए एक योजना बनाने पर सहमत हो गए हैं। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने कहा है कि नई योजना में बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने और प्रवासियों की संख्या को कम करना प्राथमिकता होगी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा, सुरक्षा, आप्रवासन, बाहरी सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमारी चर्चा में प्रमुख था। हमने कहा कि अवैध प्रवासियों को रोका जाए, अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम इसे काफी हद तक घटाया जाए। हम लड़ाई की असल वजह को दूर करना चाहते हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा देशों के साथ इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं और जमीनी हालात को सुधारने में उनकी मदद करना चाहते हैं ताकि लोगों को पलायन करने की जरूरत ही ना पड़े। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। लेकिन इटली और हंगरी का कहना है कि शिखर सम्मेलन आप्रवासन के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका और रूस दोनों ने कहा है कि सीरिया में चार दिन पहले लागू किए गए संघर्ष विराम को वे आगे भी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मॉस्को ने अमरीका से अपील की है कि वो संघर्ष विराम लागू करने के लिए विद्रोही गुटों पर दबाव बनाए। वाशिंगटन का कहना है कि रूस सीरियाई सरकार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि सहायता काफिलों को एलेपो तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। प्रभावित इलाकों में अब तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाई है और संघर्ष विराम उल्लंघन की कई खबरें मिली हैं। अमेरिका और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी योजनाएं बताने के लिए होने वाली एक बैठक को कल रद्द कर दिया था, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया। अमरीकी रक्षा विभाग का कहना है कि सीरिया में गठबंधन सेनाओं ने हवाई हमले में चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में उनके वरिष्ठ नेता को मार दिया है। पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा कि मारे गए डॉक्टर वाइली आईएस के सूचना मंत्री थे और आईएस के प्रताड़ना और फांसी वाले प्रचार वीडियो उत्पादन की देखरेख करते थे। इससे पहले इसी हफ्ते पेंटागन ने कहा था कि इस्लामिक स्टेट के मुख्य प्रचारक अबू मोहम्मद अल अदनानी पिछले महीने उत्तरी सीरिया में एक हवाई हमले में मारे गए थे। बीबीसी समाचार।
सुनने वालों का बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा में स्वागत है। गुजरात में जुलाई में कुछ दलितों की पिटाई के बाद दलितों का जो गुस्सा गुजरात की सड़कों पर फूटा था और उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी अगुवाई कर रहे थे जिग्नेश मेवाणी। युवा मेवाणी ने सरकार के सामने मांगे रखी थी कि हर एक दलित भूमिहीन को 5 एकड़ जमीन दी जाए और उन्हें काम भी मुहैया करवाया जाए। गुजरात की ऊना में कुछ कथित गौ रक्षकों ने कुछ ऐसे लोगों की पिटाई की थी जो मरी गाय का चमड़ा छील रहे थे। इससे नाराज दलितों ने यह काम कभी न करने की कसम खाई थी। हम चल रहे हैं अहमदाबाद अंकुर जैन के पास। अंकुर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये जानना चाहेंगे कि जिग्नेश मेवाणी को कब और किन हालात में हिरासत में लिया गया?
फैजल जी, जिग्नेश मेवाणी कल दिल्ली जंतर मंतर पे एक सभा करके अहमदाबाद लौट रहे थे और अहमदाबाद हवाई अड्डे पे शाम को करीबन 8:15 बजे पुलिस वालों ने जिग्नेश को एयरपोर्ट से डिटेन किया और जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ले जाकर इस बात की पुलिस ने पुष्टि की कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं देर रात अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पे दलित कार्यकर्ता और उनके सहयोगियों का ने क्राइम ब्रांच को का घेराव किया और करीबन 12 बजे के करीब जिग्नेश मेवानी को पुलिस बाहर लेकर आई और वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस उनसे कई बातों पे निवेदन ले रही है और जो पूरी रात चल सकता है और कल सुबह आज 11 बजे वो धोलका में एक कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे।
अंकुर, ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपसे हमारी पहले बात हुई थी और आपने कहा था कि पुलिस कह रही है कि एक प्रिवेंटिव कस्टडी है, तो आखिरकार अचानक से ये प्रिवेंटिव कस्टडी में मेवाणी को क्यों लिया गया, उसकी क्या वजह हो सकती है?
बिल्कुल, पुलिस ने कहा है कि उन्हें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला है जिसके लिए उनसे उनका स्टेटमेंट लेना जरूरी था। मामला यह है कि कल जिग्नेश मेवाणी ने दिल्ली में ये अनाउंसमेंट किया था कि वो पहली अक्टूबर को अगर तब तक दलितों को जमीन आवंटन का काम शुरू नहीं हुआ तो रेल रोको का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और ये कार्यक्रम जो है अहमदाबाद के मणिनगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जब वो गुजरात में चुनाव लड़ते थे वहां से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और मणिनगर में 1 अक्टूबर को रेल रोको का कार्यक्रम होगा। वहीं उन्होंने पिछले सप्ताह ये भी कहा था कि जब नरेंद्र मोदी जो हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है और गुजरात में जो उनके कार्यक्रम में कार्यक्रम डिस्टर्ब हो सकते हैं, कार्यक्रम में कुर्सियां उछाली जा सकती है, इसी को लेकर पुलिस सतर्क थी और ये माना जा रहा है कि इन्हीं कार्यक्रमों में की वजह से इनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट की गई है। आपको याद हो तो पिछले सप्ताह सूरत में बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के कार्यक्रम में पाटीदार नेताओं ने कुर्सियां उछाली थी और अपना विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं ऐसा माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की आज गुजरात में जो दो सभाएं हैं लेक लिमखेड़ा में और नवसारी में
जन्मदिन के अवसर पर
इन्हीं कार्यक्रमों में शायद दलित लोग दलित कार्यकर्ता अपना जो पूरा आंदोलन चल रहा है इसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
ये बताइए कि जिग्नेश मेवाणी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो हार्दिक पटेल के बाद या उनके साथ साथ एक तरह से नए नेता के तौर पे उभरे हैं, युवा नेता के तौर पे अचानक से।
बिल्कुल, पिछले साल जहां पाटीदार आंदोलन को लेकर गुजरात में जनाक्रोश हुआ था जिसमें हार्दिक पटेल उभरे थे, वहीं ऊना में जो दलितों को की जो पिटाई हुई थी उसके बाद जिग्नेश मेवाणी ने एक संस्था बनाई ऊना दलित अधिकार मंच और ऊना पीड़ितों के लिए उन्होंने एक पूरा क्या कहते हैं मास मूवमेंट शुरू किया। तो जहां पूरे मूवमेंट में ऊना के दलित लोग अब शामिल नहीं है, अब जो है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है और इसी को लेकर जिग्नेश मेवाणी अब खबरों में हैं। ये पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और बाद में जब इनकी आलोचना हुई कि आप ये पूरा जो मूवमेंट है राजनीतिक है तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा भी दिया और अब इन्होंने जो है राज्य देश भर में जो दलित एक्टिविस्ट है उनको साथ लेकर एक दलित अस्मिता के लिए एक नई मुहिम शुरू की।
बहुत बहुत शुक्रिया इन पूरी जानकारी के लिए अंकुर जैन। जिग्नेश मेवाणी काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं और हालांकि उनका दूसरा रूप यानी एक लीडर के तौर पर जो वो दिख रहे हैं वो हाल में ही सामने आया है। कल दिन में जिग्नेश मेवाणी दिल्ली में ही थे जैसा कि अंकुर जैन ने बताया। वापसी में उन्होंने बीबीसी हिंदी के संजीव से बात की। संजीव ने उनसे सबसे पहला सवाल रेल रोक को लेकर किया था। मेवाणी कह रखा था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो अक्टूबर में रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। संजीव ने उनसे पूछा कि रेल रोको आंदोलन क्यों करना चाहते हैं, इससे जनता को भी परेशानी हो सकती है।
हाँ, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि रेल रोको एक तरह से मजबूरन करना पड़ रहा है। हमारी जो डिमांड है वो बहुत क्लियर है कि रेवेन्यू में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक आप जमीनों का आवंटन करो। ऑलरेडी देयर इज अ प्रोविजन इन द रेवेन्यू लॉ कि आप जमीनों का आवंटन शेड्यूल ट्राइब सब दूसरी भूमिहीनों को कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर बहुत सी रैलियां निकाली, बहुत से धरने दिए, बहुत से एजिटेशन के कार्यक्रम दिए, बहुत से मेमोरेंडम सबमिट किए, अस्मिता यात्रा निकाली, बड़े बड़े महासम्मेलन करिए और भी मीटिंग चालू है। सरकार एक इंच जमीन देना नहीं चाहती, तो हम लोगों को कोई विकल्प नहीं है, मजबूरन ये करना पड़ रहा है।
उसकी वजह से जो दिक्कत होगी वो,
हाँ वही उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसकी वजह से नागरिकों को भी दिक्कत होगी, लेकिन दूसरा कोई विकल्प दूसरा कोई चारा नहीं बन गया। सारे डेमोक्रेटिक टूल्स हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिए हैं, कोर्ट में पिटीशन भी डाल के रखे है, जिन जमीनों का आवंटन उसके फिजिकल पोजीशन भी नहीं दे रहे, 20-20 साल से नहीं दे रहे। तो मेरे आंख के सामने मेरी खुद की मालिकी की जमीन है, मैं उसको कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई फ्यूडल फोर्स उसको कल्टीवेट कर रहा है। तो जिन जमीनों का आवंटन हो सकता है उसका आवंटन नहीं हो रहा है, जिनका आवंटन हो चुका है वो केवल कागज पे हुआ है। एक तरह से दलित समाज का मजाक बनाया जा रहा है।
तो गुजरात में जैसे उना का जो परिवार है या जो वहाँ के ये दलित समुदाय के लोग हैं जो गाय इस तरह का चमड़ी छीलते हैं, वो तो कंपैरेटिवली थोड़ा तो संपन्न हुए हैं पहले से।
देखिए सवाल ये नहीं कि कौन संपन्न हुआ है, हमारी जो डिमांड है वो केवल उना के पीड़ितों को न्याय मिले वो नहीं है। उना से मैं जमीन के मसले पर कैसे आ गया, उना के पीड़ितों को भी न्याय मिलना चाहिए, दूसरे कास्ट वायलेंस के जो भी विक्टिम्स हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ पूरे गुजरात के जो लैंडलेस फार्मिंग लिबरल कम्युनिटी उन सभी को जमीन का आवंटन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल दलितों को 5 एकड़ जमीन मिले, मैं तो कह रहा हूँ 5 से थोड़ी कम भी मिले, लेकिन सारे जो लैंडलेस फार्मिंग लेबरर है उन सभी को मिलनी चाहिए। तो ये जब सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं, उसके लिए डायलॉग करने को भी तैयार नहीं है, तो सरकार के ऊपर जमकर यदि अब पंप को प्रेशर बनाया रहा है तो रेल को करना पड़ेगा, उसके लिए जनता में माफ करे, इससे इनकन्वीनियंस होगा माफ करे।
इसीलिए आप मोदी जी के पीछे पड़े हैं कि मोदी जी के जन्मदिन पे आप उन्हें रेल रोकों का गिफ्ट दे रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, वो तो गिफ्ट तो उनको मिलेगा। मुझे तो ये भी सपना है कि कल उनका जो कार्यक्रम है दाहोद में, वहाँ पे नाराज जो लोग है गुजरात की नाराज जनता, वो कुर्सियां भी उछाली गई, ऐसा मुझे सपना भी आया। जिन आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत 1,20,000 एप्लीकेशन का जो निकाल नहीं हो रहा है आदिवासियों की जमीन का, वो लोग भी कुर्सी उछाल सकते हैं। जिन दलितों को जमीन का आवंटन केवल कागज पे हुआ है, फिजिकल पोजीशन नहीं मिला, वो लोग भी कुर्सी उछाल सकते हैं। जिनके बैंक के अकाउंट पे 15 लाख आने वाले थे वो नहीं आए, वो लोग भी कुर्सी उछाल सकते थे। 90,000 करोड़ के नर्मदा की कैनाल के बजट के बावजूद जिन लोगों को नर्मदा का पानी देखने तक नहीं मिला है वो लोग भी कुर्सी उछाल सकते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा था 50 लाख आवास तैयार करेंगे, 5,000 मकानों का भी निर्माण नहीं हुआ, वो लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं वो लोग भी कुर्सी उछाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उन्होंने दावा किया था, जो 32 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के दावे हुए, एमओयू साइन हुए, उसके चलते 50 लाख जॉब जनरेट कर पाएंगे, 9 लाख शिक्षित बेरोजगार है, वो बेरोजगार वर्ग वो भी कुर्सी उछाल सकता है।
और जैसा कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि उन्हें हिरासत से बाहर कर दिया गया, हालांकि पुलिस वाले उनकी निगरानी कर रहे हैं, मेवाणी की जिग्नेश मेवाणी की, जिग्नेश मेवाणी से बात की थी संजीव ने। और बिहार का रुख करते हैं। गुजरात के बाद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन करीब 11 साल बाद जमानत से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के बाद से बिहार की राजनीति गर्म है। विपक्ष इस मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरने में जुटा है। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। हमारे सहयोगी सलमान रावी सीवान पहुंचे और वहां उन्होंने शहाबुद्दीन से मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर बात की, और सबसे पहले पूछा कि उन्होंने जो ये बयान दिया कि नीतीश कुमार उनके नेता नहीं है, इसके जरिए वो क्या जाहिर करना चाहते हैं?
नहीं बिल्कुल, मेरे नेता शुरू से, मैं राजनीति शुरू किया लालू और लालू यादव से औपचारिक बात भी जब हमारी हुई थी तो हम व्यक्तिगत बात बता रहे थे। हमने कहा था उनसे कि हम आपसे साथ शुरू किए हैं, आपके साथ खत्म कर देंगे, न बाद में न पहले।
12 साल के बाद आप जेल से छूट कर आए हैं और फिर CBI आपके दरवाजे के आसपास घूम रही है। एक दल आया है जो पत्रकार राजदेव हत्याकांड से जुड़ा मामला है उस पर, और फिर एक पिटीशन दायर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में।
नहीं, वो तो न्यायालय का मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा।
बाहर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं आपके बारे में, उनके दिमाग में जो एक कंसेप्ट है, उनके दिमाग में जो एक छवि है आपकी, वो बिल्कुल दूसरी तरह की है।
इसके लिए मैं क्या कर सकता जब लोगों ने ऐसे कर दिया। डॉन ही की मैं उसी की बात करूँ, मैं मेरे पास से कोई ऐसा मार्ग नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसे मैं तमाम लोगों को बता सकूं कि ये तमाम चीज़ें गलत हैं। अब तो ये आप ही लोग बता सकते हैं और आप लोग जज करें, और मेरा मिलने का तरीका क्या पता आप देख पाए कि नहीं, मैं बहुत सुबह से नहीं गया, मैं कभी इस तरह से न चलता हूँ। डॉन का मतलब कि अगर डॉन कोई होता है इस तरह के कामों में, उसके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, इसलिए खतरा भी होता है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए कभी मेरे यहाँ मेरे बेडरूम तक मेरे लोग घुसते हैं, बच्चे घुसते हैं, छात्र घुसते हैं, तो मैं भागते फिरता हूँ जब थक जाता हूँ। तो डॉन की तो यही स्थिति है कि मैं भाग रहा हूँ लोगों से और लोग बेडरूम तक दौड़ा रहे हैं। ऐसा डॉन तो शायद आप नहीं देखा होगा।
अब जो ये CBI की जो टीम आई है राजदेव पत्रकार राजदेव के हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये जाहिर सी बात है कि आपसे भी बातचीत होगी उसमें और आपको समान आएंगे।
देखिए, बातचीत के बारे में उनका हक है, किसी से भी केस को सही दिशा लेने के लिए पूछताछ कर सकते हैं। अदरवाइज ये जिस तरह से मीडिया इसमें ले आ रही, नहीं ले आना चाहिए कि एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गया है, एक चार्जशीट ऑलरेडी आ गया है, इसमें कहीं से कोई बात नहीं आ रही। कुछ दिन के बाद बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर और बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर आती है फोटो की महिला को, और फिर नाम उछलने लगता है। तो उसके बाद से पहले मैंने जो सुना था कि सीबीआई ने मान लिया था कि बिहार गवर्नमेंट बिहार पुलिस सही दिशा में जांच बिहार पुलिस की जांच चल रही है और संतोष जताया था, इसलिए वो लेने में विलंब की किया था सीबीआई। बिहार गवर्नमेंट तो बहुत पहले 3-4 महीना पहले अनुशंसा कर दिया था।
बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी बाहुबली की भी छवि है, उनसे बात कर रहे थे सलमान रावी सीवान में। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में पिछले करीब एक हफ्ते से चल रहा सियासी और पारिवारिक संकट कुछ हद तक तो लगता है कि हल हो गया है या शायद टल गया, लेकिन सवाल अभी भी वैसे ही कुछ बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के खुद हस्तक्षेप के बाद शिवपाल और अखिलेश के बीच सुलह हो गई तो दिखती है, लेकिन सुलह के तत्काल बाद दोनों पक्षों ने कुछ जो बयान दिए उनको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। जानकारों का कहना है कि ये संकट फिलहाल टला है, खत्म नहीं हुआ। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के लिए अहम दिन रहा। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों की मुलाकात हुई। मुलायम सिंह ने घोषणा की कि उनकी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है।
कोई मतभेद नहीं है, आगे हमारे हम तो कल्याण तक है, अभी तो ये चले गए हैं। मैंने दोबारा काम कैसे करें आगे बढ़े चुनाव के लिए, उसके लिए मैंने कराई, उसके बाद आ जाएंगे। कोई कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं।
शिवपाल को छीने गए सभी विभाग वापस दिला दिए गए और गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल में दोबारा वापसी का प्रमाण पत्र मिल गया। बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस सूचना को पुख्ता कर दिया। वहीं सारे घटनाक्रम के बाद शिवपाल यादव ने एक बार फिर दोहराया कि उनके लिए नेताजी का आदेश सर्वोपरि है।
हम सब लोग नेताजी के साथ हैं और नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है।
बताया जा रहा है कि सुलह के पीछे एक दूसरे के साथ लंबी चौड़ी मंत्रणा हुई है और अंत में सब ठीक समझकर ही मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक घोषणा करने की हिम्मत जुटाई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में नेताजी छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव के ही साथ खड़े दिखे। यही कारण है कि अखिलेश यादव को जैसे ही मौका मिला उन्होंने बाहरी व्यक्ति वाले जुमले की चर्चा एक बार फिर छेड़ दी। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये तक कह दिया कि वो अब अमर सिंह को अंकल भी नहीं बोलेंगे, जबकि अमर सिंह को इस बात का बड़ा फक्र था। यही नहीं, शिवपाल यादव के समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर ही रामगोपाल यादव को पार्टी से निकालने जैसे नारे लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी का पारिवारिक और राजनीतिक संकट खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी पर लंबे समय से नजर रखने वाले लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार राधेकृष्ण कहते हैं,
अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकार का मुखिया होने के नाते उनकी परीक्षा होगी, इसलिए टिकट वितरण में उनकी चलनी चाहिए। इसके तुरंत बाद शिवपाल सिंह यादव का बयान आया कि टिकट वितरण पार्टी अध्यक्ष करता है और उसका ये हक है। अमर सिंह के मसले पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि वो बाहरी हैं और जल्द ही उनका इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर शिवपाल सिंह यादव की तरफ से बयान आया कि अमर सिंह बाहरी नहीं है, अमर सिंह समाजवादी पार्टी और उनके परिवार के हितैषी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में चल रहा संघर्ष अभी थमा नहीं है।
हालांकि कहा यह जा रहा है कि संकट को कुछ हद तक स्थायी तौर पर टालने के लिए हो सकता है कि आज अमर सिंह के बारे में नेताजी कुछ बड़ा फैसला ले लें। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीनने से खफा अखिलेश यादव को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में अहम भूमिका दे दी जाए। जानकारों का कहना है कि ऐसा होता है तो शायद चुनाव तक ये विवाद थमा रह सकता है, अन्यथा ये स्थिति जल्द ही दोबारा आएगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
बीबीसी इंडिया बोल।
विधानसभा चुनाव से एन पहले समाजवादी पार्टी में बाप बेटा, चाचा भतीजा और भाई भाई का मनमुटाव खुलकर सामने आया। पर क्या परिवार और पार्टी की दरार से और दमदार बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, या उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 17 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब जानते हैं कि अखबार क्या बोल रहे हैं। ये बताइए अमर शर्मा, आपके पास अखबारों का पुलिंदा है, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, अखबारों में जैसा आपने समीर की रिपोर्ट में हमारे श्रोताओं ने सुना, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है कि एसटी
यूपी के झगड़े को,
यूपी के झगड़े को पहली खबर बनाया है। और हिंदी अखबारों ने भी इसे, कई अखबारों ने इसे अपनी पहली जगह दी है। लेकिन साथ ही कई हिंदी अखबारों ने और साथ में इंग्लिश अंग्रेज़ी के इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में जो सियासी हलचल हुई है उसको अपनी पहली खबर बनाया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी हेडलाइन बनाई है कि आया कांग्रेस गया कांग्रेस, पार्टी लूजेस गवर्नमेंट इन अरुणाचल आ गए। मैंने इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के
आया राम गया राम,
हाँ उसी स्थिति में कि सीएम पेमा खांडू सहित पार्टी के 43 विधायकों ने भाजपा की सहयोगी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए का दामन थाम लिया है और कांग्रेस में अब सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी ही इकलौते विधायक बचे हैं। आपको
अब सिर्फ मुख्यमंत्री ही अकेला विधायक बचा
है। जी, इंडियन एक्सप्रेस खबर में, अखबार में एक और खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार अब पतंजलि के जो उत्पाद हैं वो राशन की दुकानों पर बेचना चाहती है।
बहुत अच्छी बात है।
और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक दिल्ली से खबर को अपनी पहले दूसरी पहली खबर के बाद दूसरी खबर के रूप में लगाया है कि बुधवार को यहाँ पर जो कथित गौ रक्षकों ने जैसे जो मुसलमान युवकों की पिटाई कर दी थी उस पर मदरसा के जो प्रिंसिपल है, मदरसा के बाहर ये घटना हुई थी दिल्ली में, और उसके जो प्रिंसिपल है उन्हीं के जवाई जो है उनके सन इन लॉ उनकी पिटाई हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी भावनाओं में बहे बिना वहाँ कम्युनल हारमोनी को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक
लोगों से अपील की।
उन्होंने कहा कि उन्होंने 25 साल पहले वो दिल्ली में आके बसे थे और उन्होंने अपने नेटिव प्लेस मतलब गोरखपुर जहाँ के वो रहने वाले, वहाँ उन्होंने खूब दंगे फसाद देखे हैं और उन्होंने पाया हमेशा कि दोनों पक्षों को नुकसान होता है, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की और किसी को कोई आगे नुकसान नहीं हो, इसलिए उन्होंने एक दंगे की संभावनाओं को दूर किया। एक और खबर है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि दिल्ली में चिकनगुनिया के 10 सितंबर तक चिकनगुनिया के कितने पेशेंट्स थे, कितने मरीज थे, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि आधे से ज़्यादा 1057 ऐसे केसेस में आधे से ज़्यादा मरीजों के पते गलत हैं और या इस किसी में पता नहीं लिखा है, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता कि किन इलाकों में उन्हें फॉगिंग करना है कि मच्छरों को दूर किया जा सके। और एक खबर और है हिंदी के अखबार में, अमिताभ बच्चन ने एक बयान दिया है कि लड़कियों से वर्जिनिटी पूछी जाती है और लड़के से क्यों नहीं, ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है, जब लड़कियों से पूछा जाता है उनके कुमारे के बारे में तो लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए।
जी, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म आने वाली है, वो बराबर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। अगले हफ्ते दुनिया भर के देशों के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए जमा होंगे। ये ओबामा प्रशासन का आखिरी साल है और उनकी कोशिश होगी कि कई ऐसे मामले जिन पर वो काम करते रहे उन पर इस सम्मेलन के दौरान सहमति बन सके। तो क्या होगा उनका सबसे बड़ा एजेंडा, ये जानने के लिए ब्रजेश उपाध्याय ने विदेश विभाग की दक्षिण एशिया मामलों की प्रवक्ता हेलेना वाइट से बात की और सवालों के जवाब हेलेना ने हिंदी में दिए, सुनिए।
वेल, सीरिया एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के मामले पर 20 ज्यादा से ज्यादा देशों को साथ लेने की कोशिश होगी।
सीरिया की बात की आपने, सीरिया पर क्या उम्मीद की जा सकती है?
हमारी कोशिश है कि दुनिया भर में शरणार्थियों को आर्थिक मदद दी जाए और हम चाहेंगे कि दुनिया भर की देश मिलकर आर्थिक मदद में और 30% का इजाफा करें। दुनिया भर में 6.5 करोड़ शरणार्थी हैं और हम उनकी बच्चों की शिक्षा में भी मदद करना चाहते हैं। इस साल में हम 10,000 सीरियन शरणार्थियों को स्वागत कर चुके हैं और ये नंबर एक शुरुआत नंबर है, इसमें और इजाफा करने की बात हो रही है।
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन शरणार्थियों को अमेरिका में आने देने से अमेरिका की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है, क्या वो सही हैं?
कुछ लोगों को इस बात की फिक्र है कि इन शरणार्थियों में कुछ आतंकवादी भी हो सकते हैं। हम इनकी काफ़ी ठोस سیکرٹری سے ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں.
اندازہ ہے کہ پردھان منتری مودی شاید نہیں آ رہے ہیں لیکن نواز شریف اس سمیلن میں بھاگ لیں گے, ایسا ہمیں سننے میں آ رہا ہے. کیا ودیش منتری جان کیری یا راشٹرپتی اوباما کے ساتھ ان کی کوئی دوپکشیے ملاقات ہونے کی سمبھاونا ہے, دو طرفہ ملاقات کی سمبھاونا ہے؟
جیسے آپ کو معلوم ہے ودیش منتری کیری اگست ہی میں پردھان منتری مودی سے نئی دہلی میں ملے. اگلے ہفتے جنرل اسمبلی میں ہماری اندازہ ہے کہ دو طرفہ ملاقات میں ہم فورن سیکرٹری جائے شنکر سے ملیں. اندازہ ہے کہ پردھان منتری شریف سے بھی ملاقات ہوگی.
پچھلے سنیکت راشٹر سمیلن میں جلوایو پریورتن پر بھارت نے اوباما کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا اور حال ہی میں دو طرفہ ملاقات کے دوران بھی اس وعدے کو دہرایا گیا. کیا اس پر کسی طرح کی سمبھاونا ہے کہ کوئی بھارتی پرتینیدھی منڈل کے ساتھ بات ہو؟
جیسے ودیش منتری کیری نے کہا نئی دہلی میں, امریکہ اور بھارت جلوایو پریورتن کے معاملے پر ساتھ ساتھ ہیں اور امریکہ کو پوری امید ہے کہ پردھان منتری مودی نے پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ کو پورا کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل کریں گے. امریکہ اور بھارت دنیا کے بڑی بڑی مسئلوں پر اب ساتھ ہو رہے ہیں اور اس معاملے پر بھی ہمیں بھارت سے کافی امیدیں ہیں.
ہندی میں بات کر رہی تھیں امریکہ کے ودیش وبھاگ کی دکشن ایشیا معاملوں کی پروکتا ہیلینا وائٹ اور ہمارے تکنیکی سہیوگی دیواشیش کمار کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ ہندی دیوس آج ہی ہے. اور اب سنیے کھیل سماچار.
دلی کے آر کے کھنہ ٹینس اسٹیڈیم میں کل سے بھارت اور اسپین کے بیچ ڈیوس کپ وشو گروپ پلے آف مقابلہ شروع ہوا, جہاں بھارت کے رام کمار رامانتھن اور اسپین کے فیلیسیانو لوپیز پہلا ایکل مقابلہ کھیلنے کے لیے کورٹ پر اترے. اس سے پہلے اسپین کو تب بڑا جھٹکا لگا جب ان کے سٹار کھلاڑی رافیل نڈال پوری طرح فٹ نہ ہونے کے کارن مقابلے سے ہٹ گئے. حالانکہ دنیا میں 203ویں رینکنگ والے رام کمار رامانتھن نے 26ویں رینکنگ والے اسپین کے کھبو کھلاڑی فیلیسیانو لوپیز کا جم کر سامنا کیا, لیکن پہلے دو سیٹ لوپیز نے 6-4 6-4 سے اپنے نام کیے. تو دوسری طرف رام کمار رامانتھن نے نیٹ پر شاندار کھیل دکھاتے ہوئے لوپیز کو حیران کر دیا اور لوپیز 3-6 سے ہار گئے. دوسری طرف رام کمار رامانتھن کی ماس پیشیوں میں کھچاؤ آنا شروع ہو گیا, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوپیز نے رام کمار کی سروس بریک کی. اسکور 3-0 ہوا. اس کے بعد کسی طرح رام کمار نے اپنی سروس بچاتے ہوئے اسکور 3-1 کیا. اس کے بعد رام کمار نے پھر اپنی سروس گنوائی اور اسکور 1-5 ہو گیا. انتتہ لوپیز نے اپنی سروس کو برقرار رکھا اور اسی کے ساتھ پہلا میچ 6-4 6-4 3-6 6-1 سے اپنے نام کیا. دوسرے ایکل مقابلے میں 137ویں رینکنگ والے بھارت کے ساکیت مائنینی کا سامنا 13ویں وریتا حاصل اسپین کے ڈیوڈ فیرر سے تھا. ڈیوڈ فیرر نے پہلا سیٹ 22 منٹ میں ہی 6-1 سے اپنے نام کیا. دوسرے سیٹ میں مائنینی نے 5-1 کے اسکور پر بڑی مشکل سے اپنی سروس ٹوٹنے سے بچا کر اسکور 5-2 کیا, لیکن فیرر نے دمدار شاٹس لگاتے ہوئے اگلا گیم جیت کر دوسرا سیٹ 6-2 سے جیت لیا. آخر کار تیسرا سیٹ بھی 6-1 سے اپنے نام کرتے ہوئے فیرر نے 6-1 6-2 6-1 کے اسکور کے ساتھ مائنینی کو مات دی اور اسپین کو 2-0 کی بڑھت دلا دی. آج یوگل مقابلے میں بھارت کے لینڈر پیس اور ساکیت مائنینی اسپین کے فیلیسیانو لوپیز اور مارک لوپیز کا سامنا کریں گے.
اور کارکرم ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے سنتے ہیں وشو سماچار.
بی بی سی سماچار. احمد آباد پولیس نے گجرات کے دلت نیتا جگنیش میوانی کو احمد آباد ہوائی اڈے پر کل رات احتیاطاً حراست میں لے لیا. سلوواکیا میں یورپی سنگھ کی بیٹھک اس وعدے کے ساتھ ختم ہوئی کہ یورپی سنگھ کو ادھک مضبوط بنایا جائے گا. امریکہ اور روس دونوں نے کہا ہے کہ سیریا میں 4 دن پہلے لاگو کیے گئے سنگھرش ورام کو وہ آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دوسرے پر آروپ لگایا کہ اس کارے کو پورا کرنے کے لیے پریاپت قدم نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. پولیتزر پرسکار وجیتا امریکی ناٹک کار ایڈورڈ ایل بی کا 88 سال کی عمر میں نِدھن ہو گیا ہے. 1962 میں ایک جھگڑالو دمپتی پر لکھا ان کا ناٹک ہو از افریڈ آف ورجینیا عرف نے درشکوں کو چونکا دیا تھا. بی بی سی سماچار.
تکنیکی پاک سنبھالا تھا دیواشیش کمار نے. اگلی ملاقات 1 گھنٹے میں, تب تک کے لیے فیصل محمد علی اور پوری ٹیم کو دیں اجازت. نمسکار.